अच्छा, ये सवाल है कि इस टाइम में जब कोरोना का पेंडेमिक जिस तरह ग्लोबली फैला हुआ है और बच्चे भी घर पे हैं और पेरेंट्स आदि नहीं है क्योंकि स्कूल जाते हैं पेरेंट्स की एक रूटीन थी, अब बच्चे जो है प्ले स्टेशन पर कोई लगा हुआ है, कोई सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहा है, किस तरीके से उनको यूटिलाइज़ किया जाए या उनको प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता, स्कूल में होता था, वो खुद आदी हैं, उनकी भी एक रूटीन है, क्या करना चाहिए उनको?
आई थिंक हम गलत तरीके से देख रहे हैं, तस्वीर को उल्टा पकड़ लिया हमने दोबारा से। हमें इस कोरोना के थ्रू सबसे पहले तो बच्चों को नहीं, अपनी अपनी पेरेंटहुड को एवेल्यूएट करना है। ये रूटीन्स हमें बहुत पहले से करनी चाहिए थी बच्चों को वक्त देने की। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा इम्पेशेंट हुए हैं, बच्चों से ज़्यादा तकलीफ़ में इस वक्त माँ बाप हैं कि अब हमसे ये बच्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये जो पेरेंटल टेक्निक है ना, ये टेस्ट हुई है हमारी। वी वर सो ऑफ ऑफ आवर किड्स के अब जाके पता चला है कि जब बच्चों के साथ एज अ फादर, स्पेसिफिकली मैं मर्दों से ज़्यादा मुखातिब हूँ, एज अ फादर फिगर आपकी किस लेवल के इंटरेक्शन होनी चाहिए थी और किस तरीके से आपको वक्त देना था, ये हमें बहाना मिल गया हुआ था सबसे पहले कि हम तो काम करते हैं। तो मतलब डांट टपट बीवी को वैसी होती थी कि बच्चों की परवरिश सही हो रही है नहीं रही, और मगर जब अपनी जिम्मेदारी की बात होती थी तो मर्द हजरात जो है ना, वो उनके पास एक इनेट बहाना था जो कि नहीं होना चाहिए था पहले। ये जो 200-300 साल से स्कूल सिस्टम्स का जो हमने एक वक्त का जिम्मा स्कूल्स के को दे दिया हुआ था, ये एक बहुत बड़ी एक फैमिली स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ हमारी अपनी एक कोताही थी जो कि अब उभर के सामने आई। हमें नज़र आया कि द रियल कल्प्रिट वॉज द टू पेरेंट्स इन द हाउस। नाउ वी नीड टू एस्टेब्लिश आर सेल्व्स एज पेरेंट्स। ये जो बच्चों के मामलात हैं कि वो प्ले स्टेशन पे हैं या एक्सबॉक्स पे और उनकी तालीम में फ़र्क आ रहा है, तो बेसिकली उनकी जो तरबियत में फ़र्क आ रहा था वो अब हमें नज़र आना शुरू हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वी नीडेड टू बी ट्रेन्ड एज पेरेंट्स, वी नीड टू बी वे मोर पेशेंट। ऐसे ऐसे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं और ऐसी ऐसी कॉल्स में अटेंड कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे केसेस क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे सामने कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। इवन तो बच्चों के सवाल मुझे आने चाहिए कि इन पेरेंट्स को कैसे हैंडल करूँ मैं, ये तो बहुत अच्छा था कि घर पे नहीं होते थे, बिकॉज़ हर वक्त ये आइरेट रहते हैं, हर वक्त इनकी एक बर्दाश्त का जो मादा है वो ख़त्म रहता है। और दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द अडल्ट्स, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द किड्स। किड्स वर द वे दे वर बिफोर। गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने पहले स्टार्ट हो गई गर्मियों की छुट्टियाँ, वरना जून में होती थी, अब मार्च में हो गई। तो इट्स अ प्रॉब्लम वी बेटर अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि ये बहुत बड़ा क्यू है हमें, कोरोना के थ्रू हमें क्यों मिला है, कि किस तरीके से मेरी जो फादरहुड की और मदरहुड की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो कोरोना ने हमें याद करवा दी। रही बात बच्चों को किस तरीके से उनकी साइकोलॉजी को और उनकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करना है, वो एक अलग एक लंबा चैप्टर है। सबसे पहले तो कोरोना के ऊपर ना जिम्मा डालें कि वो बच्चे कोरोना की वजह से जो है ना वो घर पे रहते हैं हर वक्त। एक्चुअली बच्चों को ज़्यादातर घर पे जो टाइम चाहिए था वो उसकी कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए इस वक्त। यू नीड टू हैव ए वेरी क्लियर चेकलिस्ट कि एज अ फादर एंड एज अ मदर मैंने अपने आप को किस तरीके से अब हैंडल करना है इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर अफेक्शनेट। एंड ये आपके सब्र का इम्तहान शुरू है। दायरा इतने डोप एडिक्ट से हम डोपामीन इतनी ज़्यादा नसों में घुसाई हुई अपने एज अ फादर एंड मदर बता रहा हूँ कि वी कैंट डू दैट इनकन्वीनियंस जॉब एनी मोर, एंड दिस इनकन्वीनियंस इज द रियल प्रॉब्लम विच वी बेटर एड्रेस। दिस इज आवर किड्स वी टॉकिंग अबाउट। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है वो नहीं बर्दाश्त हो रही है इस वक्त माँ बाप से, तो बस सुलाने की जल्दी होती है, किसी और तरीके से अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। माँ बाप की बात कर रहा हूँ। तो इनको बच्चों को एज ए टेस्ट केसेस लें और देखें कि किस तरीके से बच्चों की आपने प्रोफाइलिंग की हुई है, बच्चों को की प्रोफाइल को किस तरीके से आप चॉक आउट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों तक या उससे अगले 5 सालों तक के बीच में मेरे कौन से फ्लैग्स हैं जो कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो अचीव भी हो रहे हैं कि नहीं। हमने तो कोई रिटन डाउन स्ट्रेटजी रखी नहीं होती ना एज अ पेरेंट। हालांकि हर पेरेंट को 30 साल के एडल्ट की शक्ल सामने होनी चाहिए कि ये मेरी बेटी है या ये मेरा बेटा है। ये जब 30th ईयर ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ होगा तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने अभी देखने हैं। हम तो जॉब को एट्रीब्यूट समझ के बैठ रहे हैं, पैसे को एट्रीब्यूट समझ लिया है, करियर को एट्रीब्यूट समझ लिया है, हालांकि इंसानी जो सिस्टम है उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक बंदा पैसे कितने बना सकता है या उसकी रेपुटेशन एज अ स्किल फुल बीइंग कितनी है, एज अ ह्यूमन बीइंग किस लेवल तक वो उसको हमने पहुंचाना है वो हमें, और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वो लिखने पड़ेंगे। फिर उन 30 सालों के लिए कितनी मेहनत चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए 10 साल की मेहनत चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट्स उसके लिए वाकई 30 साल की मेहनत चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट्स 2 या 3 सालों में निखर के आ सकते हैं बच्चों में। तो उस स्ट्रेटजी को जब तक आपके सामने नहीं है तब तक आप किसी एजुकेशन सिस्टम को या अपने किसी किसी भी इंडिविजुअल को एवेल्यूएट कैसे करते हैं। सो हम बस एक फास्ट ट्रैक के ऊपर चले जा रहे थे, जो होगा देखा जाएगा कि स्ट्रेटजी के ऊपर, और देख ही जा रहे थे और फिर उन्हीं को कोसते थे कि ये 2 नंबर लीडर है तो वहाँ पे भी चोर हैं, वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ये नेक आदमी है, बेस्ड ऑन व्हाट स्केल। आपको वो तमाम एट्रीब्यूट सामने रखने जरूरी हैं एंड एवरी वन शुड राइट दैट डाउन ऑन देयर ओन इन देयर ओन बेडरूम वॉल्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले निगाह जहाँ जाती है कि मैंने अपने बच्चे के अंदर, एक बड़े एडल्ट के अंदर मेरे घर में जो पल रहा है इस वक्त, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या की हुई थी मैंने, और उसके लिए खर्चा क्या करना था आपने, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी थी आपने, उसके लिए किताबें लेके देनी थी, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम पे लेके जाना था। याद रखिएगा स्कूल इज अ पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट, हाउस इज अ फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये किसको ये बात नहीं समझ आई थी अभी तक, एक कॉन्शियस थिंकर को वैसे ही पता चल गया था कि स्कूल जो है वो एक्चुअली हैव अ सर्टन जॉब, और वो भी किस तरीके से करते हैं हम सबको पता है, वो किताबों का एक करिकुलम उन्होंने लॉक कर दिया हुआ है, बस इस करिकुलम के अंदर से हमने गुजारना है, इसको इतने पैसे लेंगे हम आपसे, हर स्कूल का ये दावा होता है। द एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बींग वॉज नेवर अ स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेपर एनी वे, इवन दो दे इनेटली हैव टू ओन इट, बट वो लेते नहीं, वो बस ग्रेड्स के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको रिवर्स इंजीनियर करके ग्रेड 1 से लेके ओ लेवल्स ए लेवल्स तक उन ग्रेड्स की स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं। आप खुद देख लें दुनिया में जितनी भी तबाहियां मचाई है ना, सबसे बड़े स्केल की जो तबाही मचाई हुई है ना लोगों ने, जो करोड़ों लोगों के ऊपर, अरबों लोगों के ऊपर तबाही मची, वो ए ग्रेडर्स ने मचाई हुई है। जो स्कूल से ड्रॉप आउट्स होते हैं या स्कूल में क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो तो छोटे छोटे चोर हैं, छोटे छोटे गुनाह करते हैं, बड़े लेवल के जो गुनाह दुनिया में चल रहे हैं वो तो हार्वर्ड ग्रेजुएट्स और येल ग्रेजुएट्स और यू नो ऑल द एजुकेटेड लॉट्स। आप किसी भी जेल में जाएं, लाहौर में है तो कोट लखपत जाएं, इस्लामाबाद में डियाला जेल जाएं, गो टू एनी प्रिजन इन मायामी और कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड टू ब्राज़ील, आप देखेंगे कि जेल के अंदर भी हायरार्की होती है। जेल के जो सबसे बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो छोटे छोटे चोर होते हैं और यू नो ठग और डिकॉइट्स, वो उनकी तो यू नो स्कोपिंग ही बहुत थोड़ी। द मोस्ट हीनस क्राइम्स आर कमिटेड बाय द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, व्हाई? बिकॉज हमने इंसान को देखा ही गलत नज़रिए से, हम अपने बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी ख्यानत कर बैठे हैं कि हम अपने बच्चे का 30वें साल 40वें साल 25वें साल का एडल्टहुड देख ही नहीं रहे होते, हम उसका बस बचपना देख के इंजॉय कर रहे होते हैं और फिर यू नो एक स्पाइरल में चल रही है सारी की सारी मामलात। सो देखेंगे कौन से लोग इस वक्त, और हर बंदे को पता होना चाहिए, मैं एक को मिसाल दे के आपको बताता हूँ कि मेरे ऊपर एज अ फादर जो जिम्मेदारी है वो है मेरी, सबसे पहले मेरी फोरसाइट बढ़ानी है मैंने, कि मैं एज अ मैन एज अ वर्किंग इंडिविजुअल इनसाइड दिस ह्यूमन सिस्टम इन द 2020s मैं अगले 50 साल में दुनिया के कौन से मामलात को ख़राब होते हुए देख रहा हूँ। ये मेरा नेचुरल जिम्मा है दुनिया के अंदर आने का, वहाँ से पर्पस ऑफ लाइफ सेट करते हैं आप। कई दफ़ा मुझसे पूछा जाता है पर्पस ऑफ लाइफ का देखने का नज़रिया ढूंढने का, वो बताएं, तो वो भी सुन लें बच्चों के थ्रू, तो आपको पता चलेगा क्योंकि उनके लिए हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और सीरियस हैं। जब मैं 2020 के बाद अगले 50 साल की दुनिया के मामलात को ख़राब होते हुए या ठीक होते हुए देखने की सलाहियत रखूंगा, तब कहीं जाके अपने बच्चे के को उन चीज़ों के लिए तैयार करूंगा। वी शुड नो एज पाकिस्तानीज, एज इंडियंस, एज आयरेनियंस, एज अरब्स, एज अमेरिकन्स, एज वेर एवर वी आर, कि हमारे इस लोकलाइज्ड सोसाइटी के अंदर अगले 50 सालों में क्या शक्ल नज़र आ रही है, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर मेरा घर का ये बच्चा है जो ये जब अपनी फुल ब्लूम पे आएगा तो उस वक्त क्या कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गुड कर रहा होगा या कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बैड कर रहा होगा, क्या वो क्या मैं उसको ऐसी कोई एक्यूमेंट डेवलपमेंट कर रहा हूँ कि वो उस वक्त की मेजर कन्फ्यूजन के पैरामीटर्स के अंदर बेचारा प्रे बन के मारा जाएगा, और वो भी कन्फ्यूज किस्म का बंदा हर वक्त दुनिया को देखता रहेगा कि मैं गलत हूँ या दुनिया गलत है, मैं भी वही कर रहा हूँ जो सब लोग कर रहे हैं, क्या हमने बस वो खसो खशाक सैलाब के अंदर फेंकी जा रहे हैं जो अब भाव के ऊपर जहाँ मर्जी ले जाएं, या फिर आर वी प्रोड्यूसिंग दोज कॉन्शियस लीडर्स एंड थिंकर्स जो कि उन बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। एज अ फादर मेरी तो शादी नहीं होनी चाहिए जब तक कि मुझे दुनिया के उन सिस्टम्स को देखना नहीं आता, क्योंकि मैं फिर अगली नस्ल को क्यों दुनिया में लेके आ रहा हूँ। सो आई नीड टू सेट अप अ पर्पस कि मैं अपनी नस्ल अगली नस्ल को किस लेवल के ऊपर तैयार कर रहा हूँ। आप इसको रिवर्स इंजीनियर करें, अगर हमारे दादाओं ने या परदादाओं ने ये वाली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की होती तो हम इस वक्त के तमाम सियासी तमाम सोशल एथिकल मामलात को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते, हम लिंग्विस्ट होते, हम लॉयर्स होते ऑफ आर्ग्यूइंग एंड डेवलपिंग थॉट, हम थॉट लीडर्स होते इस वक्त, क्योंकि इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन की तो एज कहीं नहीं आई। चलो मैं अपने दादा हुजूर को या वालिद साहब को इस लेवल की फोरसाइट के ऊपर मैं इसलिए कासिर समझता हूँ क्योंकि अचानक लेट 90s के अंदर टेक्नोलॉजी का ऐसा बूम आया कि अब इंफॉर्मेशन चैनल्स ऐसे खुल गए। मेरे दादा हुजूर को तो नहीं यूट्यूब का पता था या इंटरनेट की इस ताकत का पता था, मगर मुझे तो पता है कि इतना बड़ा स्पेक्ट्रम मेरा खुल गया आगे, तो मैं आगे कैसे देख रहा हूँ उस दुनिया को, उस दुनिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ, एक ज़रा ऐसी मिसाल देता हूँ जो सबको समझ आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 साल बाद एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो इरप्ट होगा जो कि आधी दुनिया को तबाह कर देगा, तो आपको अचानक अपने बच्चों का फ्यूचर नज़र आ रहा है तो उसकी प्रेपरेशन के लिए अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कैसे होगा, तो आप सबके साथ अचानक एजुकेशन और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और यू नो माशरती अलूम और इस्लामियात के सब्जेक्ट्स के अंदर एक ग्रेड लाने की बजाय आप उसी वक्त चैनल करेंगे उस एनर्जी को जो मैंने अभी आपके दिमाग में डाली है कि उस तरह की सिचुएशन में क्या क्या टूल किट होनी चाहिए मेरे बच्चे के पास। सो आप मुझे तो आपको पता है कि ऐसा कोई आतिश विशाल तो नहीं फट रहा, मगर छोटे छोटे तो इस लेवल के फट ही रहे हैं कि जो हमें आप देखें हम किसी न किसी ताबकारी असरात के असर ही है ना इस वक्त कोई सियासी लेवल के ऊपर रेडिएशन जो फैलाई जाती है। सो अनफोर्सीन इवेंट्स जो हैं उनको तो मैं समझ सकता हूँ, मगर जो फोरसीएबल इवेंट्स हैं फोरसीएबल सिचुएशंस ऑफ द प्लैनेट है वो तो हमें पता होनी चाहिए, वरना हमने क्या जानवर वाली लाइफ ही गुजारी है। बिल्ली के भी बच्चे होते वो बस बालिग होते हैं, अल्लाह हाफिज। हम तो इंसान हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगले 50 सालों के अंदर हमारा काम है एज मदर्स, स्पेशली एज मदर्स। मैं इसीलिए कहता हूँ लड़कियों को सोच डालें उनके अंदर, लड़कों के अंदर सोच डालें, अपने बच्चों के अंदर सोच डालें कि वो देखें आगे कि मैं कौन सी दूरबीन उनके पास आई। जिसके पास ज़्यादा बड़ी सोच होती है उसके पास दूरबीन नहीं टेलीस्कोप्स होती हैं, वो इतनी दूर तक देखता है फ्यूचर में, फिर वो प्रिपेयर करता है कि इस वक्त मैं अपने उस वक्त की तैयारी कैसे दे रहा हूँ अपने बच्चों को। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम वी बेटर सॉल्व एज पेरेंट्स, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दैट वी ऑल शुड हैव एज पेरेंट्स, एंड दिस इज वेयर कोरोना इज नाउ। लुक एट द सिचुएशन ऑफ कोरोना, आपको तो एक गोल्ड माइन मिल गई है वक्त की। वक्त से ज़्यादा बड़ा गिफ्ट क्या है कि बच्चे को फिर आप एनालाइज करें और फिर देखेंगे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस वक्त उसको चाहिए। और मैं आप बाप से ज़्यादा सिंसियर कौन हो सकता है, माँ से ज़्यादा सिंसियर कौन हो सकता है, वो आपने उसको डिवेलप करके शुरू करना है काम। और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको कुछ सालों में नजर आना शुरू हो जाएंगे, उसकी तैयारी अभी से करें ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको पर्पस मिले। ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं एडिक्ट, बच्चों को PS2 या PS4 या एक्सबॉक्स के एडिक्ट ना कहें, हम लोगों को एज मी एज फादर एंड मदर हमें अयाशी की लत लगी हुई थी। उस अयाशी के बीच में आ रहा था बच्चा कि वो अपनी अटेंशन ले रहा है, हम अपना अटेंशन वो GOARY के टॉक शोज के ऊपर इतनी ज़्यादा, इससे बड़ी बेहूदगी कोई है नहीं कि हर वक्त दो सियासतदान आपस में लड़ते हो, पूरे की पूरी कौम देख रही होती है उनको। जितना वक्त आप GO और ARY को देते हैं उसका 10% वक्त अगर आप बच्चे को दें तो वो दुनिया के सबसे बड़े टॉक शो का होस्ट बन सकता है। दिस इज द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट ही कैन गिव एंड दिस इज द काइंड ऑफ थॉट ही कैन एक्चुअली बिल्ड फॉर अदर एंड डेवलप अदर पीपल थ्रू हिज वर्ड्स एंड हिज बुक्स एंड हिज वर्क्स। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम वी बेटर सॉल्व एंड वी बेटर अंडरस्टैंड ऑफ हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस थिंकर्स एंड क्रिटिकल थिंकर्स एज पेरेंट्स।
अच्छा, अब आपने जवाब दे दिया। अगर अब ये देख रहे हैं कि प्ले स्टेशन या टीवी पे बिठाया जाता है तो उनका डोपामीन लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसके अलावा जब उनको कोई बुक पढ़ने की या कोई ऐसी डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में या कोई भी उनके फ़ायदे की फिजिकल एक्टिविटी, वो उसमें किस तरीके से उसको करें, अब डोपामीन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वापस उनके लेवल को रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है बच्चों का?
लेकिन डोपामीन अल्लाह का बनाया हुआ केमिकल है, हमने ओवरडू किया ना, आप कर दिया ओवरडू। मैं डोपामीन के को अब चूँकि हो चुकी है डोपामीन, तो उसको चैनल करने की स्ट्रेटजी दे सकता हूँ। आप उसको रिटार्डेशन में लेके जाने के लिए अभी उसका एक अलग से सेशन कर लेंगे, डोपामीन के सेंटर्स को छोटा कैसे करते हैं, लोगों के अंदर सब्र आए, लोगों के अंदर तहम्मुल आए, स्टडीनेस आए। मगर अभी जब डोपामीन के सेंटर्स डायलेटेड हैं पूरी तरह, तो उनको चैनल ऐसे करेंगे आप कि आप उन्हीं डोपामीन सेंटर्स के ऊपर, जिस मोटिवेशन के ऊपर, जिस सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड रिकग्निशन को बच्चा मांग रहा है, उसको चैनल करके ऐसी एक्टिविटीज़ घर में डिज़ाइन करेंगे आप। यू विल हैव टू गिव देम लॉन्गर essays to write or read so that they can actually come out with a certain answers jo ke questions aapne banaye hue honge usko phir jo ke dope addict hai wo bachcha usko phir usi level ki incentive jo gamification hai na wo karni padegi jo incentives dene padenge bachcho ko ke ye wala jo competition hai wo tumne jeetna hai wo competition aapne create karna hai you need to introduce healthy activities of the mind inside the homes because physical activity इस level की अभी हो नहीं सकती। So ये एक दो तीन महीने जो हैं इसके अंदर आपको mental games create करनी पड़ेंगी। There are so many that you can actually knowing your children किस age में उनको उस तरीके की activities के अंदर डालें जो कि चूँकि वो आप sense of achievement चाह रहा है तो उसको sense of achievement भी आपके दिए गए incentive से मिलेगी। So this is how you're going to, for example, introduce a quiz or a debate inside your kids and who on a certain measurable template dopamine banana milegi nahi ki kin parameters ke upar uski debate measure hogi aur usko us aapas mein debate karwaye and make sure that a loser loses har bande ko incentivize na kare warna aapki jo hai na value of the dopamine value khatam ho jayegi us puri strategy ke andar so if somebody loses he will have a recoil to come out and win again in the next term So make sure the winner gets recognized and make sure he gets that incentive that you promised him. Make sure it's a worthy incentive that you're giving him ताकि वो उस channel को, dopamine के channel को use करता हुआ दिमाग के बाकी के centers को खोले आप। And this is the kind of routine that you better be involved in yourself. आप खुद argue करें बच्चे के साथ। मैंने कुछ court rooms बना के दिए हैं अपने कुछ अहबाब को, घर में वो court room खोला हुआ है, cases debate हो रहे हैं बकायदा। 15-16 साल के टीन एजर इस वक्त किस किस लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, कोरोना का फायदा भी उठाया लोगों ने, कुछ डिबेट्स, क्योंकि मैं खुद भी जज बनने गया हूँ अपने दोस्तों के घर, उनके बच्चे डिबेट कर रहे थे, टॉपिक्स हमने दिए हुए थे, दे वर डिबेटिंग इट आउट एंड वी एक्चुअली मेड श्योर दैट यू नो द विनर इज क्वालिफाइड एज अ विनर, इज जस्ट नॉट अ विनर बिकॉज ही कैन टॉक रियली वेल बट ही ऑल्सो दैट ही कैन आर्ग्यू, उसने वेट कैसे डाला है अपने उस डिबेट में। सो इट्स अ वेरी good opportunity to understand the psychology of your kids and channel that strategy of yours inside their current psychology.